परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की
परम पूज्य गुरु सागर मुनि संत की जय।
लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान की प्राप्ति, जब भव्य जीवात्मा को हो जाती है तो वह भव्य जीवात्मा अपने शरीर में जो इंद्रियों की खिड़कियां खुली हुई है, जिसको द्रव्य प्राण कहते हैं, उनका उपयोग करना बंद कर देता है, वो उपयोग में नहीं आते। आंख देखने के उपयोग में नहीं आ सकती, घ्राणेन्द्रिय सूंघने के उपयोग में नहीं आती, कान सुनने में सुनने की क्रिया में प्रयोग में नहीं आते, और स्पर्शनेन्द्रिय भी शीत उष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के काम में नहीं आता, और भाव मन भी जो छद्मस्थ अवस्था में काम आ रहा था, अब वह उसका अस्तित्व ही नष्ट हो गया, इसलिए वह भी काम में नहीं आता है। तो काम आएगा लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। जब तक संसारी जीव के पास इंद्रिय ज्ञान होता है तब तक भावेंद्रियां पर वस्तु को और निज वस्तु को जानने और देखने में काम में आती है। बड़ी विशेषता है, बड़ा ही फर्क है क्षायोक्षम के धारी, क्षायोक्षम ज्ञान के धारी, परोक्ष ज्ञान के धारी, इंद्रिय ज्ञान के धारी सामान्य संसारी जीव में और केवल ज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर है। जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं, जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास है हम उसको खोना चाहते हैं, और जो भगवान के पास है वैसे ही पाने की शक्ति हमारे पास भी है, इसलिए हम भगवान के पास जाकर उनकी भक्ति करते हैं, और भक्ति के दौरान ये हम कहते हैं कि हे भगवान, आप केवल ज्ञान के धारी हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी हैं, और आपके ज्ञान में और मेरे ज्ञान में तुलना नहीं हो सकती, मैं ज्ञान का बूंद हूं और आप ज्ञान के सागर हैं। वो सागर के समान सीमातीत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अक्षय ज्ञान मेरे पास भी है, लेकिन वह कर्मों के उदय के कारण आज दबा हुआ है। कर्मों के उदय के कारण से उसका विनाश हुआ है, परंतु ज्ञान मात्र का विनाश नहीं हुआ है। ज्ञान का अंश पाया जाता है मेरे आत्मा में, और मेरे आत्मा के पास जो ज्ञान का अंश है, यही अंश यदि वह पवित्र हो जाता है, वह ज्ञान यदि अपने उपयोग में आने वाले अज्ञान को दूर कर देता है, मिथ्यात्व को दूर कर देता है, कषाय को दूर कर देता है, इस प्रकार भाव कर्म को यदि मेरा ज्ञान दूर कर देता है, तो मेरे सारे कर्म जो मेरे ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। ज्ञानावरणी नष्ट होगा, दर्शनावरणी कर्म नष्ट होगा, परंतु ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म को नाश करने के लिए मुझे मोहिनी कर्म को नष्ट करना पड़ेगा। मोहिनी कर्म को जब तक मैं नष्ट नहीं करता, तब तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को, जो कि घाती कर्म है, इनका नाश नहीं कर सकता। इसलिए भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे दो, मेरे ज्ञान को अज्ञान में, मेरे दर्शन शक्ति को सीमित दर्शन शक्ति के रूप में जो परिवर्तन कर रहा है, वह मेरा मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म के उदय के कारण मैं पर द्रव्यों में अटका हुआ हूं। पर द्रव्य मेरे मोहादि भाव की उत्पत्ति में कारण होते हैं, और वे मोहादि भाव, राग आदि भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये कषाय के भाव मेरे लिए नए नए कर्मों के बंध और आश्रयों में कारणीभूत हो जाते हैं। द्रव्य कर्म का उदय मेरे भावों को विकृत बनाने में, मेरे भावों में विकार पैदा करने में कारण बनते हैं, और ये द्रव्य कर्म होने से ही मैं मोह भाव को प्राप्त होता हूं, और मोह भाव को जब प्राप्त होता हूं, तो वे ही भाव आश्रय और बंध का कारण बनकर मैं कर्म का बंध करता रहता हूं। ये कर्म का बंधन, आश्रय की बंध, आश्रय और बंध की परिपाटी अनादि काल से मेरे साथ चल रही है। ये बंध की परिपाटी कब से है? अनादि काल से है। इस परिपाटी को समाप्त करना चाहता हूं, आश्रय और बंध की परिपाटी को मैं समाप्त करना चाहता हूं। तो आश्रय और बंध की परिपाटी यदि मैं समाप्त करना चाहता हूं, तो मुझे पांच विषयों पर खूब चिंतन करना पड़ेगा। उन पांच विषयों में चिंतन करते करते इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, इधर उधर आना जाना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आने जाने का कारण, कार्य चतुर्गति में भ्रमण करने का कारण बन रहा है। मुझे पांच विषयों में खूब चिंतन करना पड़ेगा, जो पांच विषय आश्रय और बंध में कारणीभूत माने गए हैं। पहला कारण मिथ्यात्व, दूसरा कारण अविरति, तीसरा कारण प्रमाद, और चौथा कारण कषाय, और पांचवा कारण योग। मिथ्याविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतव। भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पर जो ज्यादा से ज्यादा चिंतन करता है, वह अपनी आत्मा को उपलब्ध कर सकता है बहुत जल्दी। पर द्रव्यों से भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न जो चेतन आत्मा है, इसी नश्वर काया के भीतर बैठा हुआ है, और निरंतर अनादिकाल से आश्रय और बंध के परिपाटी में जी रहा है, उस आत्मा को मैं पा सकता हूं, शुद्धता के रूप में पा सकता हूं, शुद्धात्मा के रूप में मैं उपलब्ध हो सकता हूं उसे। इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा पांच विषयों के संबंध में। पहला प्रत्यय है मिथ्यात्व, दूसरा प्रत्यय है अविरति। अविरति यानी व्रत रहित भाव, ये आश्रय और बंध का कारण है। जो जीव ऐसा सोचता है कि मुझे व्रत नहीं चाहिए, तो निरंतर वह अविरत भावों में जिएगा, और जब तक वह अविरत भावों में जीता रहता है तब तक वह आश्रय बंध की परिपाटी को रोक नहीं सकता। अविरत भाव शरण नहीं है, व्रत भाव हमारे लिए शरण है। व्रत संवर और निर्जरा को कराते हैं। ये व्रत, ये सम्यक चारित्र, ये संयम हमारे लिए संवर और निर्जरा का कारण बनता है, और व्रत यदि नहीं लेंगे तो हमारे पास अविरत प्रत्यय रहेगा। ये अविरत प्रत्यय आश्रय और बंध कराएगा, और ये आश्रय बंध होता ही रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं घाती कर्मों का आश्रय बंध रुकेगा, और नहीं घाती कर्मों का हम निर्जरा करके उनका नष्ट कर पाएंगे। इन कर्मों को नाश करने के लिए मिथ्याविरति प्रमाद कषा योगा बंध हेतु तो वह ये जो सूत्र दिया है, इस ओर अपनी दृष्टि लगा करके, अपने ज्ञानोपयोग को लगा करके चिंतन में लाना पड़ेगा। मेरे जीवन में मुझे करने योग्य कार्य क्या क्या है, और न करने योग्य कार्य क्या क्या है, यहां अपने ज्ञानोपयोग को लगाना पड़ेगा। केवल हम असंयम अवस्था में ही रहकर और सम्यक दर्शन को धारण करके, यदि सम्यक दर्शन को धारण किया भी है और असंयम अवस्था है, उस असंयम अवस्था में यदि हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानकर समझकर उसमें अपने उपयोग को लगाकर केवल ध्यान करते रहेंगे, और आश्रय और बंध की परिपाटी निरंतर जारी है, असंयम नहीं गया, अविरति नहीं गई, कषाय प्रत्यय नहीं गए, और योग तो योग है, ये सब रहेंगे तो योग हेल्प करता है। बहुत अच्छा कहता है, मैं योग भी संसार का कारण हूं, कषाय भी संसार का कारण हूं, और अविरति, अविरति में तुम रहते हो तो ये सारे मित्र हमारे हैं, इस मित्र को मत हटाओ, इसको बाहर मत भेजो, इस अविरति मित्र को सुरक्षित रखो। ये कौन कहते हैं? ये मिथ्यात्व भी कहता है, कषाय भी कहती है, और योग भी कहता है। मिथ्यात्व के साथ पहले गुणस्थान में पांच बंध प्रत्यय होते, कौन कौन से पांचों जो अभी कहे गए, वही पांच बंध प्रत्यय हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और इन पांच प्रत्ययों के कारण से जिन कर्मों का आश्रय और बंध होना चाहिए उन सब का होता है, और पहले गुणस्थान में यह जीव 120 प्रकृतियों का बंध करता है, पूरे प्रकृतियों का बंध करता है। बंध योग्य प्रकृतियां जितनी हैं उन सबको बंद करता है। किस कारण से? मिथ्यात्व के उदय होने से, और मिथ्यात्व के साथ साथ शेष चार मित्र उनके साथ हैं जो हेल्प करने वाले, उनके कारण से भी बंद होता है, और मिथ्यात्व के कारण से भी बंद होता है। मिथ्यात्व के कारण से भी क्या होता है? बंद होता है। होता है कि नहीं होता?
होता ही
है, होता ही और है। किंतु इस ओर भी दृष्टि ले जाना है हमें कि मिथ्यात्व का उदय और मिथ्यात्व के परिणाम हमारे लिए बंध के कारण है या नहीं। ये बड़ी बात है, नई बात है, समझने के योग्य है। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने मिथ्यात्व को बंध का कारण कहा, अविरति को बंध का कारण कहा, कहा तो पांचों को कहा, बंध के हेतु कहा, बंध के हेतु कहा, और ये बंद का हेतु कहना ये बड़ी समझने की चीज है। शास्त्रों में पढ़ा होगा बंद कितने प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के बंद होते हैं, प्रकृति बंद, स्थिति प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। ये चार प्रकार के बंद होते हैं, चार ही प्रकार के बंद। और इन चार ही प्रकार के बंद में कारण कौन कौन है?
प्रकृति प्रदेश को
योग कारण है, प्रकृति और प्रदेश को योग कारण है, और स्थिति और अनुभव को कषाय कारण है। हम दो को ही पकड़ लें, जो बंद कराने वाले हैं वो दो ही हैं, एक योग है और एक कषाय है। इसमें मिथ्यात्व को शामिल क्यों नहीं किया? मिथ्यात्व कषाय रूप है क्या? कषाय रूप नहीं है, वो स्वतंत्र प्रकृति है। और उस स्वतंत्र प्रकृति के उदय में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव भी मिथ्यारूप ही होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। किसी भी विषय की जानकारी जो विपरीत रहती है उसको मिथ्या भाव कहते हैं। और यदि मिथ्या भाव है तो मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान भी रहेगा, और वह अज्ञान हमारे समीचीन ज्ञान को नष्ट कर चुका है। मिथ्यात्व के उदय के कारण नष्ट हो चुका है, तो हमारा ज्ञानोपयोग भी सही दिशा में विचार न करता हुआ उल्टा ही विचार करेगा। तो मिथ्यात्व के उदय में हमारा ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट होता है, अज्ञान में ही नहीं बल्कि मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या अज्ञान में कन्वर्ट होता है। सम्यक दर्शन के साथ भी अज्ञान होता है, और मुनि बनने के बाद जब तक वो 12वें गुण स्थान को पार नहीं करते तब तक अज्ञान भाव रहता है। एक अज्ञान भाव मिथ्यात्व के साथ, एक अज्ञान भाव सम्यक अग्रत सम्यक्त्व के साथ, एक अज्ञान भाव देश संयम के साथ, एक अज्ञान भाव सकल संयम के साथ, एक अज्ञान भाव सूक्ष्म संप्राय संयम के साथ, एक अज्ञान भाव यथा क्या चारित्र के साथ। ये अज्ञान कहां तक जाता है? 12वें गुण स्थान तक जाता है। और यह अज्ञान भाव जब तक रहता है, जब तक रहता है तब तक जीवात्मा को केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। और यह अज्ञान भाव क्यों रहता है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मिथ्यात्व के उदय के कारण और कषाय के कारण, कषाय के कारण रहता है। ठीक है महाराज, आप कहते जाओ, हम ठीक कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझने की चेष्टा करो। बहुत बहुत बड़ी गहरी बात है ये, बात अगर पकड़ में आ गई तो आप चारों बंद प्रत्ययों से मुक्त हो सकते हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश ये बंद जो होता है ये क्या है? तो कहते हैं कर्मों की प्रकृति, यानी स्वभाव, उसका नेचर, उसका जो नेचर होता है वो प्रकृति। उस नेचर को डालने वाला कौन? कर्मों में। जैसे कि नेचर का मतलब जो हमने कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण किया वो केवल कार्मण वर्गणा थे, उसमें आठ प्रकार की जातियां नहीं थी। हमने इकट्ठे कर्मों को ग्रहण कर लिया तो कर्म आ गए, और जिस समय ग्रहण किया उसी समय में हमने उन कर्मों में स्वभाव डाल दिया। किसके निमित्त से? तो कहते हैं योग के निमित्त से, और फिर कषाय के निमित्त से भी हमने उसमें कुछ विशेषता डाली परिणामों के माध्यम से, और यह होता रहता है। हम जानबूझकर डालते हैं ऐसा नहीं, ये तो अज्ञात अवस्था में भी होता रहता है और ज्ञात अवस्था में भी होता रहता है। ऐसा मत समझो कि हमारे लिए जब नींद लगती है तो हमको ये प्रकृति प्रदेश बंद कुछ भी मालूम नहीं रहता है, तो उस समय बंद नहीं होता। निद्रा में भी, हाँ, निद्रा कषाय में है, और वह कषाय निद्रा के काल में भी काम करती रहती है, और मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व का उदय भी निद्रा के भीतर काम करती है। मिथ्यात्व का बंध नींद में भी होती है और जागृत अवस्था में भी होती है, और तब तक होती है जब तक कि इस मिथ्यात्व को समझकर इन भावों का त्याग हम नहीं करेंगे। मिथ्यात्व को समझो जो विपरीत हमारे ज्ञान को विपरीत बनाने वाला है, हमारे ज्ञान को प्रमत्त बनाने वाला है, विपरीत बनाने वाला है, उन्मार्ग पर लगाने वाला है। उस ज्ञान को समझो, उस मिथ्यात्व को समझो। ज्ञान उल्टा बन रहा है और मिथ्यात्व उल्टा कर रहा है। अगर किसी जीव को मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो उसके भाव भी उल्टे रह नहीं सकते। ये कर्म की देन होती है। कर्म का उदय है तो ही हमारा ज्ञान भी उल्टा होगा, और कर्म का उदय नहीं है तो हमारे ज्ञान को उल्टा करने वाला बाहरी निमित्त न होने से, मिथ्यात्व का उदय न होने से हमारा ज्ञान भी उल्टा नहीं रहेगा, वो सम्यक्त्व के रूप में रहेगा। और जब हमारा ज्ञान सम्यक्त्व के रूप में रहेगा तो मिथ्यात्व को भी बंद नहीं करेगा, आश्रव नहीं करेगा, और हमारा योग भी मिथ्यात्व के उदय के कारण से, कितने प्रकृतियों का आश्रव बंद होता है, मिथ्यात्व उदय के कारण से कितने कर्मों का आश्रव और बंद होता है, 16 प्रकृति 16 और अनंतानुबंधी कषाय के उदय से कितने का, 25। इस प्रकार जब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं बनते तब तक 43 प्रकृतियों का बंध निरंतर करते रहते हैं। और इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं जागो, जाग कर तत्व का विचार करो। तत्व के विचार से ज्ञान में सुधार आता है, ज्ञान में समझदारी बढ़ती है, और जब ज्ञान में समझदारी बढ़ गई, तत्व का ज्ञान हो गया, विषय स्पष्ट हो गया कि ये असत्य है, ये सत्य है, ये हेय है, ये उपादेय है, ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये अंधश्रद्धा है और ये अंधश्रद्धा से मुक्त विचार है, ऐसा दोनों को समझता है। किसके माध्यम से? तत्व का ज्ञान करके, जिनेंद्र भगवान की वाणी का अध्ययन करके, मुनियों की वाणी को सुनकर, भगवान की वाणी को सुनकर, देशना लब्धि को जब प्राप्त करता है तो उस देशना लब्धि के काल में सब कुछ विषय स्पष्ट हो जाता है, विपरीत श्रद्धा नहीं करता और न ही विपरीत श्रद्धा में अटक सकता है, क्योंकि वो भव्यात्मा है, भव्यात्मा अटकेगा नहीं। भव्य अर्थात तो जो होना चाहता है वो भव्य, अभव्य अर्थात तो जो अटकना ही चाहता है, आगे होना ही नहीं चाहता, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, अपने जीवन को परिवर्तनशील रखना नहीं चाहता, उनको क्या कहेंगे, तटस्थ रहना चाहता है, एक ही जगह जहां से अनादि से आए हैं उसी टाइप से हम रहना चाहते हैं, तो उस जीव को तटस्थ होने से सम्यक ज्ञान का लाभ नहीं होता। हियोपादे का ज्ञान होते हुए भी यदि वह अपनी आत्मकल्याण के लिए उपाधेयभूत तत्वों को स्वीकार नहीं करता, ग्रहण योग्य विषय को ग्रहण नहीं करता, तो अटक जाता है। और अटकना किस किस कारण से होता है? एक मिथ्यात्व के उदय के कारण से, और जो उस गुणस्थान में जो कषाय प्रधान कषाय अनंत अनुबंधी कषाय उदय में है, वो कषाय लोभ पैदा करती है, वह कषाय मान पैदा करती है, वह कषाय माया पैदा करती है, वह कषाय क्रोध भी पैदा करती है। अनंत अनुबंधी के चार प्रकृतियां हैं, क्रोध मान माया लोभ। ये चार कषायें हमें मान कषाय के वशीभूत करके, देखो मान कषाय भी चार प्रकार की हो गई, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन और ये अनंत अनुबंधी। इन चार प्रकार के मान कषायों में से कौन सी मान कषाय ज्यादा हानिकारक है? अनंत अनुबंधी। तो अनंत अनुबंधी मान कषाय का जब उदय होता है और हम मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं, मिथ्यात्व का कार्य तो इतना ही है। मिथ्यात्व हमारे लिए क्या का कार्य कराता है? मिथ्यात्व ये कराता है कि तुम्हारे भाव सारे के सारे तत्व के विरुद्ध उल्टे हो जाए, विपरीत श्रद्धांत जिसको बोलते हैं, उल्टे हो जाए, ऐसे विपरीत श्रद्धांत पैदा करा देता है। और जीव अंधविश्वासी होता है, अंधश्रद्धालु बनता है। जिसमें धर्म नहीं है उसको धर्म कहता है, जिसमें हित नहीं है उसको हित कहता है, जिससे सुख की उपलब्धि नहीं है उसको सुख की उपलब्धि कहता है, और जिससे आकुल व्याकुलता है उसी को सुख का कारण मानकर उससे श्रद्धांत रखता है, उसी से श्रद्धांत रखता है। और इस श्रद्धांत को विपरीत श्रद्धांत कहते हैं, उल्टी श्रद्धा। और इस उल्टी श्रद्धा को हटाने के लिए हमको अटकना नहीं चाहिए। श्रद्धा अगर उल्टी बन गई है, संस्कार अगर अनादिकाल के उल्टे पड़ गए हैं, तो इसको हटाने के लिए संकोच करना चाहिए? इसको हटाने के लिए क्या ये सोचा जाए कि मैंने तो अभी तक ऐसा ही जाना, ऐसा ही समझा, ऐसा ही अनुभव किया है और ये अनादिकालीन है, ये असत्य हो सकता है क्या? और सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, वो बहुमत जुटाता है। विपरीत कितने लोग कहते हैं? तो इतने लोग। तो ये सब पागल हो सकते हैं क्या? ये सब पागल हैं क्या? ऐसा कहता है कौन? अपनी आत्मा। अपने आत्मा के परिणाम, अपने आत्मा के भाव इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। और धर्म के क्षेत्र में, आत्मकल्याण के क्षेत्र में वह लोगों को आधार बना करके धर्म का निर्णय करता है। देखो कैसा होता है, तत्व की ओर आना, सत्य को पाना, यह स्वतंत्र काम है, अनेक लोगों का काम नहीं। दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के आप इधर आना चाहते हैं तो ये तीन काल में संभव नहीं। आप क्या पुष्ट कर रहे हैं? मैंने अभी तक ये समझा है और ये अनादिकाल से है, प्राचीन है, और जो जितना प्राचीन उतना ही बड़ा धर्म, ऐसी परिभाषा है धर्म की उनके पास। प्राचीनता धर्म है, तो प्राचीनता यदि धर्म है तो अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात्व का कषाय और उनके उदय में होने वाले भाव आदि ये अनादिकाल से है और बहुत प्राचीन है, तो ये धर्म होना चाहिए। प्राचीनता अगर कुछ धर्म होता है, प्राचीनता ही धर्म है, तो ये कषाय सबसे पहले धर्म होना चाहिए। हमारा मंदिर बहुत प्राचीन है और इसमें जो कुछ है वो बिल्कुल सही है, क्यों? प्राचीन होने के कारण। अब लो क्या समझाया जाए, अब नई बात को स्वीकार करने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार नहीं है, बहुत प्राचीन है। हमारे बुजुर्ग जो बांधे थे वो क्या पागल है क्या? ऐसे विचार आते कि नहीं आते? ऐसा विचार क्यों आते कि हम यथार्थ की ओर जाना नहीं चाहते। यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है, झूठ क्या है और सत्य क्या है, उसको ज्यादा गहराई से अंदर घुस करके पकड़ना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पहले 200 साल पहले जो मंदिर बना करके गए हैं वो पागल थे क्या, इस पर अटक जाते हैं। और पागल नहीं थे या ये कैसे जजमेंट लिया आपने, तो ये हम नहीं जानते, ज्यादा क्वेश्चन मत करो ये कहते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मत करो, हमको दिमाग के लिए ज्यादा टेंशन मत दो। 200 साल हो गए, वो प्राचीन है और वो पागल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ऐसा निर्णय हमारा है। और ये मंदिर है, इस मंदिर में हम जाते हैं और जन्म से ही जा रहे हैं, किसी ने ये बात नहीं कही और आप पहली बार ये कह रहे हैं, हमारे लिए मुसीबत है। 200 साल तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ गलती है इसमें, और पहली बार आप कह रहे हैं, तो हम स्वीकार करें कैसे करें? और एक जन ही आप ही कह रहे हो और इसमें बहुमत तक नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन बहुमत से होता है या क्या स्वयं के निर्णय से होता है? स्वयं को सत्य का खोज करके सत्य को अकेले में पकड़ने से होता है क्या? साथ में अनेक लोग चाहिए पकड़ने के लिए? पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए क्या? धर्म बहुमत नहीं मांगता। धर्म कहता है, धर्म का भी एक इतिहास है, धर्म तो ये बताता है मेरे साथ आज तक किसी ने बहुमत के रूप में साथ नहीं दिया, मैं दुखी हूं, इस बात का बड़ा दुख है मुझे। धर्म कहता है किसी ने मुझे साथ ही नहीं दिया, बहुमत से कभी चुनाव मेरा हुआ ही नहीं, अनादि से एक बार भी नहीं हुआ। धर्म चुन करके नहीं आता कभी, जब भी चुन करके आता है अधर्म ही चुन करके आता है और अधर्म का ही राज चलता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ टिप दे देता हूं, विचार करना। अनादिकाल से जीव संसार में चार गति में सम्यक दृष्टि भी रहे हैं और मिथ्या दृष्टि भी रहे हैं। क्या ये सम्यक दृष्टि रहे हैं? बहुमत आने के बाद सम्यक दर्शन धारण किया? सम्यक्त्व के ऊपर इतने बोट पड़ गए कि मिथ्या तो कम पड़ गया और सम्यक्त्व के बोट पर अधिक हो गए, तब उसने सम्यक दर्शन धारण किया? ऐसा कभी हुआ है? नहीं है। तो अनादिकाल से जो इस संसार में सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या चली आ रही है वो असंख्यात है, असंख्यात से ज्यादा नहीं है। और अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीवों की जो संख्या चली आ रही है वो अनंतानंत है, अनंतानंत। तो अनंतानंत को जीतने के लिए उन मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या को तो असंख्यात करना पड़ेगा और हमको अनंतानंत बनना पड़ेगा सब सम्यक दृष्टियों को, तभी यह धर्म सत्य होगा। जब तक बहुमत में नहीं आएगा धर्म, तब तक सत्य नहीं होगा। और धर्म हमेशा से अल्पमत में है और संसार में असंख्यात ही जीव है सम्यक दृष्टि, और वो अल्पमत में थे, तो अल्पमत में थे और वो अनंतानंत थे, तो ये झूठ थे और वो सही थे। इनमें अधर्म था और अनंतानंत जीवों में धर्म था, ऐसा कहें बहुमत के आधार से, क्योंकि वही जीत करके आया है हमेशा। अरे बहुमत में तो कभी धर्म होता ही नहीं। धर्म जब भी होता है ये धारणा बना लो कि अल्पमत में ही धर्म होता है और अल्पमत में ही धर्म रहेगा, था है और रहेगा। ये त्रैकालिक नियम है, सिद्धांत है। धर्म कभी भी अल्पमत में ही रहेगा, मनुष्य भव में भी अल्पमत में। ये मत समझो कि मनुष्य भव में कभी बहुमत में आ जाएगा ये धर्म। मिथ्यात्वी जीवों की संख्या किसी दिन कम पड़ जाएगी और सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या किसी दिन बढ़ जाएगी, ऐसे आशा भी मत करो। ये निसर्ग नियम है, केवली भगवान ने कहा है ऐसा एक समय एक सेकंड के लिए भी नहीं होगा। धर्मात्माओं की संख्या बढ़ गई, मनुष्य धर्मात्माओं की संख्या, मनुष्यों अधर्म मनुष्यों की संख्या, मिथ्यात्वी जीवों की संख्या मनुष्यों की संख्या कम ज्यादा ही रहेगी और सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या कम ही रहेगी। तो कितनी? तो कहते हैं संख्यात, मनुष्य संख्यात रहेंगे। क्योंकि ढाई द्वीप के भीतर ही मनुष्य रहते, ढाई द्वीप के बाहर नहीं रहते। सम्यक दृष्टि त्रिरंचों की संख्या असंख्यात हो सकता है, देवों की संख्या सम्यक दृष्टियों की असंख्यात के रूप में हो सकता है, नारकी जीव भी असंख्यात हैं, तो सम्यक दृष्टि नारकी जीव असंख्यात हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य संख्यात ही होगा सम्यक दर्शन के रूप में, कभी बढ़ेगा नहीं। क्योंकि ढाई द्वीप के भीतर ही सीमित क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं और उनकी संख्या गर्भज मनुष्यों की संख्या देखो तो संख्यात ही है, समूर्छन मनुष्यों की संख्या कुछ अधिक है, किंतु गर्भज मनुष्यों की संख्या देखो जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनकी संख्या संख्यात ही है और उस संख्यात से भी संख्यात गुना सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं और शेष सभी मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं। तो धर्म को जब हम करते हैं तो हमारे लिए ये विवेक रखना चाहिए, धर्म को कभी भी हम बहुमत की ओर से देख करके ग्रहण न करें और बहुमत में कभी रहेगा नहीं, आएगा नहीं वो। और ये भी नहीं समझिए कि धर्म अनादि से हो तो ही मैं ग्रहण करूंगा, प्राचीन हो तो ही मैं ग्रहण करूंगा, अभी अभी शुरू हुआ हो तो ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा विचार करोगे? जो जो प्राचीन है वही धर्म है, तो प्राचीन मंदिर भी होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड ठीक है, प्राचीन मंदिर होते हैं, तो प्राचीन मंदिर को ही ग्रहण करना चाहिए, नए जो मंदिर होते हैं उसमें दर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी का है, ये दर्शन करने की योग्य नहीं, इसमें धर्म नहीं होता क्योंकि पुराना नहीं है। जो जो पुराना होता है वही धर्म कहेंगे, तो जो जो नया होता है उसको त्याग करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। तो ऐसा करते हो क्या? और पुराना मंदिर भी अगर पुराना हो गया, गिरने लगा पत्थर उसकी मिट्टी गिरने लगी, तो जीर्णोद्धार क्यों करते हैं? उसकी प्राचीनता नष्ट हो जाएगी जीर्णोद्धार करने से, उसको वैसे ही रहने दो, जितना गिरेगा उतना ही प्राचीन धर्म। जिस मंदिर का जितना क्षरण हुआ है और जितने काल से क्षरण होता आया है उतना ही उत्कृष्ट धर्म उसमें है, उसको जीर्णोद्धार करने की जरूरत नहीं। जीर्णोद्धार करेंगे तो प्राचीनता मिट जाएगी और प्राचीनता मिट जाएगी तो धर्म मिटने वाला है। तो बोलो, प्राचीनता धर्म है, पुराने ईंट पत्थर मूर्ति इत्यादि धर्म है कि धर्म कुछ अलग है? और मंदिर प्राचीन हो गया तो क्या जीर्णोद्धार नहीं करना चाहिए? और उसमें कोई कमी हो तो उसको दूर नहीं करना चाहिए? क्या वो भी प्राचीन है इसलिए रहने दो? भैया इतना तो कम से कम रहने दो। ऐसा नहीं सोचा जाता। धर्म क्या है समझ में नहीं आता। प्राचीन मंदिर धर्म नहीं है। प्राचीन मंदिर हो चाहे नया मंदिर हो, ये हमारे धर्म की उत्पत्ति में सहयोग देते, दोनों ही सहयोग देते हैं, बराबर सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं कि प्राचीन मंदिर ज्यादा, उसने ज्यादा सहयोग दिया और नया मंदिर ने कम दिया। नया मंदिर में जाने से सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए वर्षों लगे और प्राचीन मंदिर में जाने से जल्दी मिनटों में सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे धर्म के लाभ लेने में कोई फर्क पड़ेगा क्या नया मंदिर में और प्राचीन मंदिर में? ऐसा कुछ सिद्धांत होता तो हमारे सारे के सारे बुजुर्ग जो थे उनके भी प्राचीन मंदिर थे उनके पहले, उनको वैसे ही रखते, जीर्णोद्धार नहीं करते, ना नया बनाते, ना हटाते, कुछ भी नहीं करते, उसको वैसे ही रखते। और वैसे ही रखते तो वही हमको आज मिलते, और वही आज मिलते तो हमको भी बड़ी खुशी होती कि देखो इन्होंने जीर्णोद्धार नहीं किया, देखो इन्होंने इधर का उधर नहीं किया है, हटाया नहीं है। इसलिए प्राचीन जो धर्म है वो सुरक्षित है। तो प्राचीन वस्तु की सुरक्षा से प्राचीन धर्म सुरक्षित है ऐसा कह सकते हैं? वस्तु और धर्म अलग अलग है क्या? नहीं, धर्म अलग है और वस्तु अलग है। वस्तु धर्मोत्पत्ति में सहायक होता है, वो तो आयतन है। जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, ये सब आयतन है। शास्त्र, ये सब आयतन है। तो शास्त्र को नए क्यों छपाते हो? प्राचीन शास्त्र जो पुराना होता है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, टुकड़े टुकड़े जिसके हो रहे हैं, उसको पढ़ने से धर्म का लाभ होता है, नए शास्त्रों को पढ़ने से धर्म का लाभ नहीं होता। देर लगती है उसमें, ऐसा है क्या? नहीं। यदि ऐसा है तो कोई भी शास्त्र ही नहीं छपाते, वही जो टूटे फूटे पड़े हैं, एक एक अक्षर लिखा हुआ है, उसको जोड़ जोड़ करके पढ़ रहे हैं, और प्राचीनता के कारण से जल्दी सम्यक दर्शन अंदर उत्पन्न हो रहा है। जब प्राचीन मंदिर चाहिए है तो बहुत सारे हैं जो पाषाण के बने हुए हैं, बहुत सारी जगह है, हजार हजार साल, 1500 साल पहले के, 2000 साल पहले के भी मंदिर आपको मिल सकते हैं। वहां जाके दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है या नहीं, धर्म उपलब्ध हो सकता है क्या? नहीं। सम्यक तो ज्ञान और चारित्र, ये धर्म है, ये धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। ये रत्नत्रय जल्दी उत्पन्न होता है क्या लेट उत्पन्न होता है, वहां जाकर के अनुभव करो, होगा धर्म? जल्दी होना चाहिए, प्राचीन होने से जल्दी और अर्वाचीन होने से, अभी का होने से बहुत लेट। अभी आए हैं आप, ये मंदिर नया है और सम्यक दर्शन ऐसे आते ही नहीं होता, ऐसा डेली आया करो, जीवन के अंतिम समय में होगा, ये कहीं नया मंदिर है ये। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं है। तो मंदिर इतने महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे प्राचीन हो चाहे अर्वाचीन हो। मंदिर तो हमारे आयतन है, हमारे आत्मा के अज्ञान को दूर करने के सहायक है। हमें प्राचीनता को या अर्वाचीनता को लेकर के अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन है, धर्म नहीं है। और फिर वो एक वो बन गया क्या वास्तु, प्राचीन वो एक कोई संस्था बनी है मंदिरों की सुरक्षा के लिए, क्या उसका नाम तीर्थ रक्षा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पुरातत्व एक बना है, वो प्राचीन मंदिरों की रक्षा करता है। और प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने नहीं देता, वो पड़ा है तो पड़ा रहने दो, जीर्ण शीर्ण है तो जीर्ण शीर्ण रहने दो, वो गिर रहा है नष्ट हो रहा है तो वैसे ही रहने दो, उसको इधर का उधर भी नहीं रखना, जैसा है वैसा है। तो ये रक्षा क्यों कर रहा है, ये ऐसी रक्षा क्यों करता है पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीजों को, जीर्ण शीर्ण वस्तुओं को जीर्ण शीर्ण ही रखना चाहता है, क्यों, क्या कारण है मालूम नहीं। अरे आप तो पुरातत्व के तत्वों को स्वीकार करते हैं, और पुरातत्व क्यों है, क्यों रक्षण कर रहा है, यही मालूम नहीं। पुरातन है इसलिए, ठीक है पुरातन है इसलिए वो तो करना चाहिए, सुरक्षा तो करना चाहिए, पत्थर वही रहे पुराने रहे, नए मत डालो उसमें। परंतु पत्थर गिर गया है तो उठा करके उसको पुनः ऊपर न रखा जाए, वहीं पड़ा रहने दे, और फिर केवल जिस अवस्था जिस परिस्थिति में वो है उसी की रक्षा के लिए पुरातत्व बना है, ये समिति बनी है, तो अज्ञान की समिति है, वो समिति कुछ नहीं जानती, उस समिति के भीतर अज्ञानता भरी हुई है। ऐसी रक्षा से क्या मतलब, जो नीचे गिरने के बाद ऊपर उठा के नहीं रख सकते, इस वस्तु को यहां यहां इसकी सुरक्षा नहीं होती, यहां सुरक्षित नहीं रह सकता, इसका एक नया मंदिर बना करके वहां रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां अच्छी तरह से इसकी सुरक्षा होगी, ये प्राचीन है, और नया कुछ बना करके उसमें इसको रखा जाए जो यहां नष्ट हो रहा है, या मूर्ति हो उसके कलाकृति के पाषाण हो कोई भी हो, उसको उठा करके रख करके रक्षा नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पुरातत्व को ही नष्ट करने के लिए बना है, ये हो जाएगा। पुरातत्व पूरा ही तत्व को नष्ट करने के लिए बना, उसमें जो प्राचीन तत्व थे हम रक्षण करना चाहते थे, पुरातत्व के तत्व तो आपके हाथ में है, वो जो समिति बैठी हुई है उनका अधिकार नहीं है इसमें, ये आप जो करना चाहते हैं वो हो सकता है, आपके पास विवेक है ज्ञान है, पर पुरातत्व के अंदर तो कोई विवेक नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है, वो पूरे तत्व को ही मिटाने के लिए बना है। अगर वो पुरातत्व सिद्धांत ये कहता है कि इस मूर्ति को यहां नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो पुरातत्व अज्ञान में है, पुरातत्व पूरा ही मूर्ति के तत्व को मिटा रहा है। तो वस्तुतः देखो पुरातत्व के रक्षक आप बनेंगे विवेक ज्ञान के माध्यम से, वो पुरातत्व समिति आपके पुरातत्व की रक्षा नहीं कर सकता, वो नष्ट करेगा, वो ध्यान नहीं देगा, जो जैसा पड़ा है वैसा ही नष्ट होने दे ये कह रहा है। तो उस पुरातत्व को आप यदि संरक्षण देते हैं तो आपकी प्राचीनता प्राचीन मंदिर सभी मिट जाएंगे, पुरातत्व के कारण से पूरे आयतन मिट जाएंगे हमारे, क्योंकि उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके संरक्षण नहीं करना चाहिए, ये कहता है वो। और दूसरी बात, हमारे मंदिर और मूर्तियां ये सभी हमारे सम्यक्तों के उत्पत्ति में सहायक हैं, क्या मंदिर और मूर्ति ही सम्यक्तो है, ये साधन है या साध्य है? ये साधन है, साध्य सम्यक दर्शन है, और ये मंदिर आयतन और मूर्तियां ये साधन है। इन साधनों के आलंबन से हमको धर्म को उपलब्ध करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और वह आयतन आयतन हो अनायतन न हो ये जरूरी है। जिससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती और सम्यक दर्शन में बाधा आती है, उल्टी बाधा आने लायक वहां पर कोई चीज हो और आयतन के भीतर उसका भी मिक्सर हो, मिश्रण हो, तो उसको अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो हमारे सम्यक्त्व की उत्पत्ति में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं दे सकता है, उसको अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, जैन धर्म के सारे शास्त्र, बोलो नहीं बोलो नहीं, जैन धर्म के सारे शास्त्र यही कहते हैं। जैन मंदिरों में वीतराग मूर्तियां हैं, दिगंबर मूर्तियां हैं, और दिगंबर मूर्तियों के दर्शन से और श्रद्धान से सम्यक्त्व की उपलब्धि बताया है, या और अन्य किसी मूर्ति से भी? मूर्ति दिगंबर होना चाहिए, क्योंकि वह उस दिगंबरत्व में ही सात तत्व पाए जाते हैं, और तत्वात् श्रद्धानम् सम्यक् दर्शनम्। दिगंबर वेश को धारण किए बिना परिग्रह का त्याग नहीं होता, जो पाप का कारण है, पापाश्रव का कारण है, और इसलिए हमारे मंदिरों में दिगंबर प्रतिमा ही होती हैं, और मंदिर का नाम भी लिखा रहता है, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, महावीर दिगंबर जैन मंदिर, शंभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, और दिगंबर शब्द जोड़ते क्यों है उसको? अंदर मूर्ति दिगंबर है, इसलिए मंदिर का नाम भी दिगंबर है। और मंदिर यानी आलय, और दिगंबर मूर्ति यानी चैत्य, चैत्य और चैत्यालय, ये दोनों ही नव देवता की कोटि में आते कि नहीं? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा और जिन चैत्यालय नव देवता जिन चैत्यालय चैत्यालय यानी शिखर से लेकर नीचे तक ये जो मंदिर है इसको चैत्यालय कहते हैं, आलय कहते हैं। जिस आलय में चैत्य हो और चैत्य होने से ही जो आलय पूज्य माना जाता हो, कहा है ना रत्नगढ़ शंकराचार्य में, मुनि का शरीर भी पवित्र है। वो पवित्र क्यों? और श्रावक का शरीर पवित्र नहीं है? मुनि का शरीर तो पवित्र है, और मुनि का श्रावक का शरीर अपवित्र। किस सिद्धांत के आधार से इसको कहा? रत्नत्रय। आप सबको मालूम है कि रत्नत्रय के आधार से मुनि का शरीर भी पूजनीय है, पूजनीय मतलब आदरणीय, शरीर का भी आदर होता है। पूजनीय का मतलब आदर, आदर होना, किंतु वस्तुतः नमन के योग्य कौन है? रत्नत्रय है या शरीर है? रत्नत्रय की वंदना होती है, और वह रत्नत्रय को धारण करने वाला आत्मा अंदर नहीं है तो क्या उस शरीर की वंदना कर सकते हैं? मुनि का समाधि मरण हो गया है मान लो, और आत्मा तो रत्नत्रयधारी आत्मा तो उस शरीर में जब तक था तभी रत्नत्रयधारी था, जब बाहर आया तो रत्नत्रय नहीं रहा, अविरत हो गया, वो सम्यक दर्शन और ज्ञान को लेकर के चला गया विग्रह गति से कहीं जन्म लेने के लिए, देवगति में गया। शरीर को छोड़कर बाहर आने के बाद वह आत्मा भी वंदनीय नहीं है, क्योंकि उसके भीतर संयम नहीं रहता। मनुष्यायु को समाप्त जब तक नहीं करता, मनुष्यायु समाप्ति तक ही संयम रहता है। मनुष्यायु जहां खत्म हो गया, संयम खत्म हो गया, दर्शन और ज्ञान साथ चलता है। विग्रह गति के मुनि की आत्मा भी वंदनीय नहीं है। सर्वार सिद्धि में जितने भी देव हैं वो विग्रह गति से तो गए, विग्रह गति में वंदनीय नहीं थे, और न ही वहां जन्म लेने के बाद वो वंदनीय है, जबकि प्रत्येक देव वहां पूर्व भव से मुनि अवस्था से ही आया है। सर्वार सिद्धि में मुनि व्रत धारण के बिना सर्वार सिद्धि में जन्म नहीं हो सकता। प्रत्येक देव मुनि था पूर्व भव में, और उस भव से सर्वार सिद्धि गया है। तो क्या सर्वार सिद्धि के देव वंदनीय हैं क्योंकि वो पूर्व भव में मुनि थे? तो क्या वंदनीय है? नहीं है। किस कारण से नहीं है? तो उनके पास दो ही रत्न हैं, रत्नत्रय नहीं, रत्नद्वय है, रत्नद्वय है, रत्नत्रय नहीं। अब ये जो रत्नद्वय है, ये रत्नद्वय भी वंदनीय तब होते हैं जब इस रत्नद्वय के साथ संयम का समागम होता, त्रिवेणी बन जाती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय, नमनीय, नमस्कार करने की योग्य तभी होते हैं जब इनके साथ संयम जुड़ता है। ये जैन तत्व है। हाँ, ये जैन तत्व है। जैन तत्व क्या है? सम्यक दर्शन और ज्ञान की वंदना करना, पूजा करना, नमोस्तु करना, ये जैन तत्व है क्या?
नहीं।
अगर ऐसा होता तो सर्वार सिद्धि के देव भी पूजे जाते, और यहां पर बैठे हुए सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका ये सभी पूजी जाती, क्योंकि रत्नद्वय आपके पास भी है। आप सात तत्वों पर श्रद्धान करते हैं क्या? नहीं। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो रत्न तो है ही, तो आपकी पूजा वंदना अनादिकाल से क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण ढूंढो। क्यों नहीं होती? उसका कारण ढूंढो। चारित्र नहीं है। कौन सा चारित्र चाहिए? देश चारित्र या सकल चारित्र? सकल चारित्र चाहिए। और देश चारित्र हो तो भी वंदना अर्चा उसकी नहीं होती। नमोकार मंत्र में पांच ही पद हैं, नमो लोये सव साहू नम, यहां पर यंड हो जाता है। आगे के छठे लाइन में किसी का नाम नहीं है और न ही उल्लेख है, और लाइन बनाई नहीं गई। देश संयमी श्रावक आरिका, छुल्लक, ऐलक, प्रतिमाधारी, ये देश संयमी कहलाते हैं, ये अनुवृत्ति कहलाते हैं, ये वृताव्रत गुणस्थान में रहते हैं, ये एक देश वृत्ति भी हैं और अवृत्ति भी हैं। एक देश वृत्ति इसलिए कि एक देश परिग्रह का त्याग किया है, इसलिए तत्संबंधी अनुवृत्त है, और जितने प्रमाण में परिग्रह त्याग नहीं किया है तत्संबंधी पाप भी मौजूद है। और इस प्रकार से जितने प्रमाण में पाप है और जितने प्रमाण में व्रत है उनके पास त्याग है, वो दोनों ही मिलकर के विरता विरक्त सयमा संयम, संयम भी और असंयम भी, पांचवें गुणस्थान का नाम सयमा संयम बता दिया, विरता विरत बता दिया, यानी वृत्ति भी अवृत्ति भी मिश्र भाव है वहां। सयमा संयम रूप मिश्र भाव है। इन मिश्र भावों की वंदना करने के लिए हमारे नमोकार मंत्र में नमो पंचम गुणस्थान वर्ती नम, एक और चाहिए, छठा पद और चाहिए। किंतु क्या है छठा पद अपने नमोकार मंत्र में? ये तो पंचम गुणस्थान वर्ती की बात हो गई, चौथे गुणस्थान वर्ती को ले लो। नमो सव सम्मा इट्टी नम, तीन लोक में जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं उन सब के लिए नमन, ऐसा एक मंत्र बनाई जाए क्या? भगवान ने तो कहा, हमने तो पांच पद दे दिया, ये पांच पद का जो जाप करता है वही मोक्ष पाता है, वही सम्यक दर्शन पाता है। जिसमें छठा पद कोई जोड़ेगा और सातवां पद कोई जोड़ेगा, एक पंचम गुणस्थानवर्ती का जोड़ना और एक चतुर्थगुणस्थानवर्ती का मंत्र जोड़ना, तो हो गए सात पद हो गए। सप्तपदी नमोकार महामंत्र, ये नमोकार मंत्र आप अनादि मानते हैं कि नहीं मानते? उसमें कितने पद हैं? पांच ही तो हैं। और वो पांचों दिगंबर है क्या नहीं? और वो पांचों सकल महावृत्ति है क्या नहीं? वो पांचों परिग्रह रहित है क्या नहीं? परिग्रह रहित है। और इन्हीं की वंदना करते हैं हम। नमोकार मंत्र तो जैन धर्म में सबसे बड़ा शास्त्र यही है, सबसे बड़ा प्रामाणिक, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जैन धर्म में परिग्रहधारी जीवों को नमस्कार किया है या नहीं इसको ढूंढने की जरूरत नहीं, नमोकार मंत्र में ढूंढो मिल जाएंगे। परिग्रह रहित हैं या परिग्रह सहित हैं? क्या मानोगे आप? तो दिगंबर जैन है ना, आपसे हम पूछते हैं कि आप दिगंबरत्व की उपासना करते हैं क्या वस्त्रधारी की भी उपासना करते हैं? अगर वस्त्रधारी की उपासना करते हैं तो आप राकेल मिक्स पेट्रोल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का उपयोग नहीं करते, राकेल मिक्स पेट्रोल का उपयोग करते हैं। और राकेल मिक्स पेट्रोल का उपयोग करेंगे तो गाड़ी क्या क्या करेगी? भरभराएगी, आवाज छोड़ेगी, धुआं छोड़ेगी। और फिर लोग पूछेंगे अरे ये तो धुआं छोड़ रहा है ज्यादा, क्या बात है? तो कहना तो पड़ेगा हमने उसमें कुछ संयम भी डाला है कुछ असंयम भी डाला है। इस गाड़ी में तो ऐसा किया है, उस बाजू के गाड़ी में तो हमने राकेल ही राकेल डाला है, असंयम ही असंयम डाला है। क्या है जैन धर्म? इसका नाम दिगंबर जैन धर्म है। दिगंबरों दिगंबरों की प्रतिष्ठा यहां है। जिन मंदिरों में दिगंबर मूर्ति ही केवल होती है वो असली दिगंबर जैन मंदिर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चिंतन करना है, गहरा नहीं जाना है। ऊपर दिगंबर जैन धर्म को हम ऊपर 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 करते हैं तो वो आता नहीं जीवन में, डूब के उसको पकड़ना है, डूब के पकड़ो उसको। क्या है दिगंबर जैन धर्म? आपका अडनाव दिगंबर जैन समाज, समाज का अडनाव, और अपना नाव आप अड ले जा रहे हैं तो मोक्ष कैसे जाएगा? वो मंजिल तय कैसे करेगा, रास्ता तय करके मंजिल कैसे पाएगा? दिगंबर जैन मंदिर का मतलब धर्म भी दिगंबर, गुरु भी दिगंबर, शास्त्र भी दिगंबर। इन तीनों के कारण से वह मंदिर प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अगर वहां वस्त्रधारियों का कुछ अस्तित्व है और उसकी भी आप उपासना करते हैं, अस्तित्व है तो है लेकिन यदि अस्तित्व है तो उसकी उपासना भी आप करेंगे वस्त्रधारियों की, तो उपासना करते हो तो पेट्रोल में राकेल मिक्स करते हो। ये उपासना असंयम में संयम को, सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व को मिक्स करके यदि हम अपनी आत्मा की गाड़ी चलाएंगे तो क्या मोक्ष तक पहुंचेगा? महाराज इस प्रकार कहने वाला ही कोई नहीं आया था अभी तक, समझ में तो आ रहा है लेकिन प्राचीन है क्या करें? और प्राचीन लोग जो किए हैं वो गलत हो सकता है क्या? ये भी एक क्वेश्चन, और ये व्यर्थ के क्वेश्चन। इसमें कोई धर्म विकसित नहीं होता, धर्म की पुष्टि नहीं होती, ये सब कुतर्क हो जाएंगे। ये प्राचीन है, प्राचीन लोगों लोग क्या पागल थे क्या, ये ऐसे विचार सिद्धांत के जब वो विरुद्ध ही हैं, तो उसका क्या महत्व है? जिन आयतनों से सिद्धांत की पुष्टि हो, धर्म की पुष्टि हो, जिस प्राचीन लोगों से और प्राचीन आयतनों से सिद्धांत की बराबर पुष्टि होती है, उसमें कोई दोष नहीं आता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो आयतन है। परंतु वस्त्रधारी मूर्तियां क्या आयतन हो सकती हैं? क्या वो नव देवता के भीतर हैं? क्या उनका अस्तित्व नमोकार मंत्र में है? नमोकार मंत्र में हो तो मत निकालो, और यदि निकालना भी नहीं चाहते तो मत निकालो, हम मना नहीं करते, लेकिन कम से कम सिद्धांत जिससे पुष्ट होता है वो क्रिया तो करो। अब जब नमन करते हैं तो दोनों को नमन करते हैं, तो ये तो पेट्रोल में राकेल मिक्स हो ही रहा है। आप तो दिगंबर जैन, दिगंबरों के आराधक, आपके देवता तो नौ देवता हैं, और नौ देवता में कोई भी वस्त्रधारी नहीं है, न ही नमोकार मंत्र में कोई वस्त्रधारी है, और न ही नौ देवता में वस्त्रधारी है, पंच परमेष्टियों में भी नहीं और नौ देवता में भी नहीं। और फिर वस्त्रधारी की भी वंदना, पूजा, अर्घ्य, नमन, आरती इत्यादि बहुत जगह होती है, और ये दिगंबर जैन है। बहुत जगह होती है और ये फिर भी दिगंबर जैन है। अडनाव नहीं बदलते ये लोग, हम दोनों करते हैं, इसलिए मिश्र दिगंबर जैन भी नाम रखने को तैयार नहीं होते। ये तो नई बात हो गई, हम ऐसा भी हम इसको भी रोड़ी से ही ग्रहण करेंगे, हम पूर्व से ही दिगंबर जैन उनको क्या करोगे, हम पूर्व से दिगंबर जैन हैं, इसलिए हम इसको मिटा नहीं सकते, अपने नाम को, अपने अडनाव को, समाज का और हमारे व्यक्तित्व रूप से व्यक्ति का, हम दिगंबर जैन थे और दिगंबर जैन हैं और दिगंबर जैन रहेंगे। परंतु काम कैसे करेंगे? मिश्र काम करेंगे, मिश्र काम करेंगे, दूध पिएंगे लेकिन छाछ डाल करके पिएंगे, ये आदत पड़ी हुई है और धारणा ऐसी हो गई कि दोनों धर्म ही है, और यदि दोनों धर्म हो तो धर्म में तो बाधा आ रही है, सिद्धांत में बाधा आ रही है। सिद्धांत तो ये शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि जो उसमें संयम से युक्त है वही धर्म है, जो संयम से युक्त नहीं है, वस्त्रधारी है, वो अधर्म है। वस्त्रधारी की पूजा तो वो जीव करता है जिसको धर्म का असली ज्ञान नहीं है, असली तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो वस्त्रधारी की पूजा, आराधना, उपासना, नमन आदि करता है, तो वो बात अलग है, वो व्यक्तिगत अज्ञान की बात हो जाएगी। परंतु जिनको ये ज्ञान है कि वस्त्रधारी असंयमी होता है, असंयम अधर्म है, असंयम पांच प्रत्ययों में से एक प्रत्यय है क्या? नहीं, असंयम यानी वस्त्र, वस्त्र के कारण से असंयम, असंयम अधर्म है, असंयम असंयम पाप है, असंयम आश्रय और बंध का हेतु है, और असंयम आश्रय और बंध का हेतु होते हुए भी वस्त्रधारी की पूजा कैसी हो रही है? नहीं, तत्व विश्लेषित किया जा रहा है, कौन करता इसका प्रश्न नहीं है, कैसे हो सकती है हम ये पूछ रहे हैं, हो सकती है क्या?
नहीं
हो सकती। तो पक्का ये धारणा बना लो कि जहां वस्त्र होता है वहां असंयम प्रत्यय होता है, और जहां असंयम प्रत्यय होता है वहां आश्रव और बंध होता है, और आश्रव और बंध ये दोनों तत्व नहीं अतत्व है, यानी जो मुक्ति को दे नहीं सकते वो अतत्व, और जो मुक्ति को दे सकते हैं वो तत्व। तत्व को ग्रहण करो, अतत्व का त्याग करो, तत्व का श्रद्धान करो, अतत्व का विसर्जन करो। आश्रव और बंध वस्त्रधारी की पूजा नमन आदि करने से होगा या नहीं होगा?
होगा।
वस्त्रधारी रहकर यदि हम अपने आप को संवर और निर्जरा का कारण समझ लेते हैं और वस्त्र सहित हमारे लिए केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी धारणा बना लेंगे, तो यह धारणा अधर्म धारणा है या धर्म धारणा है? ये सारभूत, कंप्लीटली सारभूत निष्कर्ष यही है, बंद के पांच प्रत्यय, और उन बंद के पांच प्रत्ययों में मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व यही है कि वस्त्रधारी जीव भी आयतन है और दिगंबर जीव भी आयतन है। ऐसे दोनों को स्वीकार करना और दोनों को समान रूप से भजना, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्यात्व प्रत्यय है। ये अज्ञान के उदय के कारण, तत्व ज्ञान न होने के फलस्वरूप ये मिथ्यात्व तब तक रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। सिद्धांतों का ज्ञान होने पर कोई भी व्यक्ति कोई मंदिर निर्माण करेगा तो वस्त्रधारी जीवों को वहां स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि लोग, सामान्य लोग इतने अज्ञानी रहते हैं, तत्व ज्ञाता हर एक जन्म से तत्व ज्ञाता होकर के नहीं आता, वो दोनों को भजने लगते हैं, वस्त्रधारी को भी और दिगंबरों को भी। ऐसा होता है क्या? नहीं है? आप देख रहे हैं क्या? नहीं, इसको सब जगह देखते हैं आप, तो ये सब दिगंबर जैन है। राकेल मिक्स पेट्रोल बेचने वाले सब दिगंबर जैन, ओ सब दिगंबर जैन। भगवान कहते हैं मिक्स नहीं करना, जहां मिक्स है उसकी आराधना नहीं करना और मिक्स भी नहीं बनना। हमारी धारणा मिक्स ना हो, हमारा आचरण मिक्स ना हो, हमारे मंदिर मिक्स ना हो, हमारा ज्ञान मिक्स ना हो, हमारा सम्यक तो धर्म मिक्स ना हो, हमारा संयम मिक्स ना हो, ये जैन तत्व। और इन तत्वों का अध्ययन जितना करेंगे डूबेंगे, डेथ में जाएंगे, जितना डेथ में जाएंगे उतने आपका मन उज्जवल होता जाएगा, आप ज्ञानी बनते जाएंगे, आपका ज्ञान परिशुद्ध होता जाएगा और आप परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। यह सम्यक ज्ञानी आत्मा ही परमात्मा बनता है। इस सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ जब तक संयम नहीं जुड़ता तब तक इन दोनों में पवित्रता पूज्यता नहीं आती। वो सम्यक दर्शन और वो सम्यक ज्ञान वो भी अपूज्य हैं, अपवित्र हैं, मंगल नहीं है, अमंगल है। चार मंगल में आते हैं क्या? केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चार मंगलों में रखा जाता है क्या? एक दिगंबर मुनि भी चौथे गुणस्थान में आया है तो उसको भी नमोकार मंत्र से गेट आउट कर दिया, उस दिगंबरों को भी यहां नहीं भजना ये कह दिया है। एक दिगंबर मुनि पंचम गुणस्थान में आता है तो वो भी वंदनी पूजनी नहीं कहा जाता, असंजदम न वंदे वच विहीन हो विसोन वंदिज दोने भी होंते समाना एगो विन संजदो होगी। अश्वपाहुड़ में जिनेन्द्र भगवान का सीधा सूत्र है, असंयमी जीव वंदनी नहीं होता। और असंयमी कौन? दो प्रकार के, वस्त्रधारी तो असंयमी प्रत्यक्ष असंयमी है, परंतु दिगंबर भी यदि भाव संयम को नष्ट करके द्रव्य संयम के साथ पांचवे और चौथे गुणस्थान में भी आए हैं तो वो भी असंयम है, असंयम की कोटि में आते हैं, और उनको भी नमोकार मंत्र में रखा नहीं गया है, उनको भी असंयत कहा गया है, और असंयत कह करके वंदनी पूजनी भी नहीं कहा है। ये गहराई के दिगंबर तत्व हैं, जाके डेप्थ में जब अध्ययन करोगे तो ये मिलेगा, और ऊपर ऊपर रहोगे तो सब समान दिखेंगे। ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको उस समुद्र में ऊपर की मछलियां दिखेंगी, डेप्थ में जाओगे बड़ी बड़ी मछलियां भी है, ये ज्ञान मिलेगा। जैन धर्म गहरा है, ये तत्व गहरे हैं, ये इन तत्वों से सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, वह सम्यक दर्शन सबको, निर्दोष सम्यक दर्शन, पेट्रोल वाला सम्यक दर्शन, प्योर सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।
परम पूज्य नियम सागर महाराज की जय।